नमस्ते, मैं आराव हूँ। नाइनार ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, द आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल थिंकिंग। अल्बर्ट रदरफोर्ड और जे एच किम की गैर कथा पुस्तक है, जो रोजमर्रा की सूचनाओं को आंकड़ों की सहायता से परखने की बुनियादी क्षमता पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य पाठक को पेशेवर सांख्यिकीविद बनाना नहीं, बल्कि समाचार, विज्ञापन, शोध दावे, चुनावी आंकड़े और उपभोक्ता निर्णयों में मौजूद संख्यात्मक दावों को अधिक सावधानी से समझने योग्य बनाना है। पुस्तक एडवांस्ड थिंकिंग स्किल्स श्रृंखला का भाग है और वर्णनात्मक तथा अनुमानात्मक सांख्यिकी, प्रायिकता, पी वैल्यू, भ्रामक चार्ट और अध्ययन पक्षपात जैसे विषयों का परिचय देती है। इसका केंद्रीय तर्क है कि आंकड़े स्वयं निष्पक्ष उत्तर नहीं देते, क्योंकि उनका अर्थ नमूने, प्रस्तुति, संदर्भ और प्रश्न पूछने के तरीके पर निर्भर करता है। इसलिए पुस्तक का जोर गणना याद करने से अधिक इस बात पर है कि किसी संख्या को देखकर कौन से प्रश्न पूछे जाए। यह उन पाठकों के लिए उपयोगी प्रवेश बिंदु है जो आंकड़ों से दूरी महसूस करते हैं, लेकिन अपने निर्णयों को कमजोर या भ्रामक सूचना के आधार पर नहीं लेना चाहते। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, वर्णनात्मक और अनुमानात्मक सांख्यिकी के बीच व्यावहारिक अंतर। पुस्तक सांख्यिकीय सोच को दो पूरक स्तरों पर रखती है, वर्णनात्मक सांख्यिकी और अनुमानात्मक सांख्यिकी। वर्णनात्मक भाग उपलब्ध आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से दिखाने से जुड़ा है, जैसे औसत, अनुपात, वितरण या चार्ट के माध्यम से यह बताना कि किसी दर्ज किए गए समूह में क्या दिखाई देता है, लेकिन इस स्तर पर निष्कर्ष केवल उसी डेटा तक सीमित रहता है। यदि किसी सर्वेक्षण में कुछ लोगों की राय दर्ज है, तो उसका औसत पूरे देश, बाजार या समुदाय का स्वतः प्रतिनिधित्व नहीं करता। अनुमानात्मक सांख्यिकी इसी सीमा को समझने का उपकरण है। यह नमूने से बड़ी आबादी के बारे में सावधानी पूर्वक अनुमान लगाने की कोशिश करती है। पुस्तक की उपयोगी बात यह है कि वह इन दोनों को अलग अलग देखने की आदत पर जोर देती है। पाठक को पूछना चाहिए कि संख्या किस समूह का वर्णन कर रही है, नमूना कैसे चुना गया और व्यापक निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं। यह भेद समाचारों और व्यावसायिक दावों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहां सीमित डेटा को अक्सर सामान्य सत्य की तरह प्रस्तुत किया जाता है। सांख्यिकीय सोच का अर्थ हर निष्कर्ष को नकारना नहीं, बल्कि निष्कर्ष की पहुंच को उसके साक्ष्य की पहुंच के अनुरूप रखना है। दूसरा, भ्रामक चार्ट और संख्यात्मक प्रस्तुति की पहचान। पुस्तक का एक स्पष्ट व्यावहारिक विषय भ्रामक चार्ट और आरेखों से सावधान रहना है। दृश्य प्रस्तुति जटिल डेटा को जल्दी समझने में मदद करती है, पर वही प्रस्तुति धारणा को प्रभावित भी कर सकती है। उदाहरण के लिए, किसी ग्राफ का अक्ष बहुत संकीर्ण सीमा से शुरू हो, पैमाना असमान हो या तुलना के लिए अलग अलग आधार लिए गए हों, तो छोटे अंतर भी असाधारण बड़े दिख सकते हैं। इसी प्रकार, प्रतिशत का दावा तब अधूरा हो सकता है जब वास्तविक संख्या, तुलना का आधार, अवधि या नमूने का आकार ना बताया जाए। पुस्तक का व्यापक संदेश यह है कि आकर्षक दृश्य को प्रमाण का विकल्प नहीं मानना चाहिए। एक सजग पाठक पहले शीर्षक या निष्कर्ष को स्वीकार करने के बजाय माप की इकाई, समयावधि, कुल संख्या और तुलना के संदर्भ को देखता है। यह आदत विज्ञापन, सार्वजनिक नीति, स्वास्थ्य संबंधी दावों और वित्तीय रिपोर्टों में काम आती है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भ्रामकता हमेशा जानबूझकर नहीं होती, कभी खराब डिजाइन, अधूरी व्याख्या या अनुचित तुलना भी गलत धारणा बना सकती है। इसलिए पुस्तक संदेहपूर्ण दृष्टि सिखाती है, लेकिन निराधार विश्वास नहीं। लक्ष्य यह समझना है कि चार्ट क्या दिखा रहा है, क्या छिपा सकता है और क्या उसका निष्कर्ष उपलब्ध डेटा से अधिक बड़ा तो नहीं है। तीसरा, प्रायिकता के आधार पर अनिश्चितता में निर्णय लेना। द आर्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल थिंकिंग निर्णयों को निश्चित उत्तरों के बजाय संभावनाओं के संदर्भ में देखने पर बल देती है। दैनिक जीवन में बहुत से फैसले, खरीदारी, बचत, जोखिम, स्वास्थ्य या सूचना पर विश्वास पूर्ण जानकारी के बिना लिए जाते हैं। ऐसे में प्रायिकता यह नहीं बताती कि कोई एक घटना अवश्य होगी, बल्कि यह समझने का ढांचा देती है कि विभिन्न परिणाम कितने संभावित हैं और उनके प्रभाव क्या हो सकते हैं। पुस्तक के दृष्टिकोण में बेहतर निर्णय का अर्थ केवल सबसे आकर्षक परिणाम चुनना नहीं है। इसमें प्रमाण की विश्वसनीयता, घटना की मूल संभावना और गलत निर्णय की लागत पर विचार शामिल है। किसी दुर्लभ घटना के बारे में डरावना दावा या किसी उत्पाद के असाधारण लाभ का दावा तभी ठीक से समझा जा सकता है जब पाठक आधार दर और उपलब्ध साक्ष्य दोनों पर ध्यान दे। प्रायिकता इसलिए निर्णय को अधिक विनम्र बनाती है। व्यक्ति यह मानता है कि उसका अनुमान गलत भी हो सकता है और उसी के अनुसार सावधानी, विकल्प तथा जोखिम नियंत्रण तय करता है। यह पुस्तक गणितीय सूत्रों के भारी अभ्यास के बजाय प्रायिकतामूलक भाषा और तर्क को निर्णय क्षमता से जोड़ती है। इसका लाभ यह है कि पाठक अनिश्चितता को कमजोरी नहीं बल्कि हर गंभीर निर्णय की वास्तविक शर्त के रूप में देखना सीखता है। चौथा, पी वैल्यू को शोध के अंतिम प्रमाण के रूप में ना देखना पुस्तक शोध को पढ़ते समय पी वैल्यू की भूमिका समझने की आवश्यकता बताती है। पी वैल्यू सांख्यिकीय परीक्षणों में प्रयुक्त एक संकेतक है, लेकिन इसे अक्सर गलत ढंग से निर्णायक सत्य या किसी प्रभाव की निश्चितता मान लिया जाता है। अधिक सावधान व्याख्या यह देखती है कि परीक्षण किन मान्यताओं पर आधारित था, नमूना कितना बड़ा था, प्रभाव का वास्तविक आकार क्या था और क्या निष्कर्ष अन्य साक्ष्य से मेल खाता है। केवल सांख्यिकीय महत्व का संकेत व्यावहारिक महत्व की गारंटी नहीं देता। बहुत बड़े नमूने में मामूली अंतर भी सांख्यिकीय रूप से उल्लेखनीय दिख सकता है, जबकि उसका वास्तविक जीवन में प्रभाव सीमित हो सकता है। दूसरी ओर छोटा या कमजोर नमूना किसी उपयोगी प्रभाव को स्पष्ट रूप से पकड़ ना पाए। पुस्तक का मूल्य इस चेतावनी में है कि शोध की भाषा को बारीकी से पढ़ा जाए। किसी शीर्षक में यदि कहा जाए कि अध्ययन ने कुछ सिद्ध कर दिया, तो पाठक को अध्ययन की सीमा, तुलना, मापन और निष्कर्ष की पुनरावृत्ति जैसी बातों पर विचार करना चाहिए। यह रुख वैज्ञानिक शोध को खारिज नहीं करता। इसके विपरीत यह शोध के निष्कर्षों को उनकी उचित अनिश्चितता और संदर्भ के साथ समझने की आदत बनाता है। इस प्रकार पी वैल्यू एक उपयोगी उपकरण रहता है, पर अकेला फैसला देने वाला मानदंड नहीं। अंत में नमूना चयन और पक्षपात से निष्कर्षों की विश्वसनीयता तय होती है। पुस्तक संभावित पक्षपात को सांख्यिकी समझ का केंद्रीय मुद्दा मानती है। डेटा की मात्रा बड़ी होने पर भी उसका निष्कर्ष अविश्वसनीय हो सकता है यदि डेटा जुटाने का तरीका एक तरफा हो। नमूना चयन में पक्षपात तब पैदा होता है जब जिन लोगों, घटनाओं या रिकॉर्डों को शामिल किया गया है वे उस व्यापक समूह का संतुलित प्रतिनिधित्व नहीं करते जिसके बारे में दावा किया जा रहा है। स्वयं चुने गए ऑनलाइन सर्वेक्षण, सीमित ग्राहक समूह की प्रतिक्रिया या केवल सफल मामलों पर आधारित निष्कर्ष ऐसी समस्या पैदा कर सकते हैं। पक्षपात मापने के तरीके पूछे गए प्रश्न और परिणाम प्रस्तुत करने के चयन में भी आ सकता है। इसीलिए पुस्तक पाठक को केवल परिणाम नहीं डेटा की उत्पत्ति देखने के लिए प्रेरित करती है। किसने अध्ययन कराया, किस उद्देश्य से, किसे शामिल किया गया, किसे छोड़ा गया और कौन सा विकल्प तुलना के लिए लिया गया, ये प्रश्न निष्कर्ष की गुणवत्ता बदल सकते हैं। यह दृष्टि विशेष रूप से तब उपयोगी है जब कोई दावा किसी उत्पाद, नीति या सामाजिक समूह के बारे में व्यापक निष्कर्ष देता है। सांख्यिकीय सोच यहाँ एक नैतिक अनुशासन भी बनती है, क्योंकि यह लोगों को अधूरे प्रमाण से बने रूढ़ निष्कर्षों से बचाती है। पुस्तक का सार यह है कि निष्पक्ष दिखने वाली संख्या भी पक्षपाती प्रक्रिया से निकल सकती है, इसलिए डेटा के पीछे की प्रक्रिया को समझना आवश्यक है। निष्कर्ष में यह पुस्तक उन सामान्य पाठकों के लिए सबसे उपयुक्त है जो समाचार पढ़ते हैं, बाजार में खरीदारी करते हैं, शोध आधारित स्वास्थ्य दावे सुनते हैं, चुनावी आंकड़े देखते हैं या काम पर रिपोर्टों के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसे पढ़ने के लिए उन्नत गणित की पृष्ठभूमि आवश्यक नहीं लगती, क्योंकि इसका घोषित उद्देश्य सांख्यिकी की पेशेवर पाठ्यपुस्तक बनना नहीं बल्कि आंकड़ों के सामने अधिक विवेकपूर्ण पाठक और निर्णयकर्ता बनाना है। विशेष लाभ उन लोगों को हो सकता है जिन्हें औपचारिक सांख्यिकी पाठ्यक्रमों में सूत्र तो मिले पर रोजमर्रा के दावों की जांच करने का ढांचा नहीं मिला। पुस्तक की व्यावहारिक उपयोगिता चार्ट की जांच, प्रतिष्ठों के संदर्भ को समझने, प्रायिकता के साथ सोचने, शोध में पी वैल्यू को संतुलित रूप से पढ़ने और पक्षपात के स्रोत पहचानने में है। इसी कारण यह केवल डेटा विश्लेषण की पुस्तक नहीं, सूचना साक्षरता की पुस्तक भी है। समान श्रेणी की कई पुस्तकों की तुलना में इसका अलग पक्ष निर्णय निर्माण और भ्रामक सूचना की पहचान को केंद्र में रखना है। फिर भी जो पाठक गहरे सांख्यिकीय सिद्धांत, विस्तृत गणनाएं, प्रोग्रामिंग या कठोर शोध पद्धति का प्रशिक्षण चाहते हैं, उन्हें इसे आरंभिक मार्गदर्शक मानना चाहिए, पूर्ण तकनीकी संदर्भ नहीं। इसकी वास्तविक ताकत सरल लेकिन आवश्यक प्रश्नों की आदत बनाना है। डेटा क्या कहता है, कितना कहता है और वह किस आधार पर कहता है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं अल्बर्ट रदरफोर्ड, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।